तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है।
ओम शांति। हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी बाबा की राज दुलारी, हम सब की मार्ग प्रदर्शक प्यारी दादी की स्मृति में अमृत वेला से हम आज उसी दिव्य विभूति के संग संग क्षण क्षण का अनुभव करते हुए अपने आप को आनंदित फील कर रहे हैं। प्रकाश मणि एक ऐसी मणि जिसने अपना प्रकाश सारे विश्व की आत्माओं में प्रकाशित किया। मुझे याद आता है कि सन 1953 में दादी जी का जापान जाने का प्रोग्राम बना था। उस समय 2-3 घंटे के लिए दादी जी लखनऊ में आई थी। उस समय मैं लखनऊ में ही थी और मुझे दादी जी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना मालूम था ये दादी जापान जाने वाली है। और जब मैंने दादी को प्रथम बार देखा तो मुझे दादी इतनी अच्छी लगी, एकदम उन्मुक्त, प्यार और स्नेह की मूरत, निश्चल, एकदम निस्वार्थ, ऐसे लगता था उड़ता हुआ कोई फरिश्ता हो जो मेरे सामने से आ रहा जा रहा है। और दादी ने बड़े प्यार से मेरे को अपने पास बुलाया और बुलाकर मेरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कब से ज्ञान में चल रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। तो मैंने दादी को सुनाया। दादी ने कहा कि जब आप बाबा से मिलेंगी ना तो बाबा आपको देख के बहुत खुश होगा और आप बाबा को देख के निहाल हो जाएंगी। मुझे ये शब्द दादी के बराबर बराबर कानों में गूंजते रहे कि इतना बड़ा वरदान दादी मुझे देकर गई है। और मेरे अंदर ये आया कि इतनी निश्चल, इतनी प्यार की मूरत दादी, इतनी हल्की, तो मैं अगर सेवा पर कहीं गई ना तो मैं इनके साथ में रहूंगी। ये संकल्प मेरे को आया। फिर दादी तो जापान में गई और मैं उस बात को थोड़ा भूल गई, लेकिन जब मुझे पता चला कि जापान से दादी आने वाली है तो मैंने अपना प्रोग्राम बनाया कि दादी के स्वागत में मैं भी जाऊंगी। और मैंने मधुबन में आई, मैंने क्या देखा कि एक एक आत्मा, एक एक भाई, एक एक बहन और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा बाबा भी, ऐसा लगता था दादी के आवाहन में, दादी के स्वागत में सब पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। कोई कहाँ खड़ा था, कोई कहाँ खड़ा था, कोई कहाँ खड़ा था कि कब दादी आती है, कब दादी आती है, कब हम बाबा को समाचार सुनाएंगे। सब लाइन में खड़े हुए थे। वो घड़ी भी पहुंची, दादी आई मुस्कुराती हुई, साथ हिलाती हुई। ऐसा लगता था जैसे पहले फरिश्ता नहीं समझ में आता था, लेकिन अब जानते हैं कि फरिश्ता किसको कहते हैं। तो ऐसे ही हल्की फुल्की जैसे लगता था उड़ती हुई दादी हाथ हिलाती मुस्कुराती सबसे मिलती आगे बढ़ी। तो जैसे सागर और गंगा का मिलन होता है, ऐसे बाबा ने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और बड़े प्यार से दादी के माथे पे हाथ फेरते रहे। बच्ची आ गई, बच्ची आ गई। और बाबा उसको साथ में अपने प्यार से साथ में लेकर आया और संधि पर बिठाया। क्या स्वागत किया था दादी का उस समय, क्या बाबा ने किया था, क्या मधुबन वासियों ने किया था। लेकिन दादी उससे न्यारी, जैसे बाबा में ही समाई हुई थी कि इतने समय के बाद मैं यहां आई हूं। तो मैंने देखा कि कितना प्यार है परिवार का और भगवान का दादी के साथ में। तो ऐसा लगा कि जैसे यज्ञ के शुरू में मम्मा आई थी तो बाबा ने मम्मा की जन्म पत्री वाँच ली थी कि मम्मा यज्ञ की विशेष आत्मा बनेगी। मम्मा नाम तो पीछे मिला। इसी तरह से जब दादी आई तो दादी को भी बाबा ने उसी दृष्टि से देखा और बाबा ने पहचान लिया कि ये मेरा कोहिनूर हीरा है। और फिर दादी की विशेषताओं को देखते हुए बाबा ने उसको उसी रीति से उठाया, सवारा, श्रृंगार किया, आगे बढ़ाया। और दादी की शुरू से एक विशेषता रही कि दादी को जो कुछ भी बाबा ने कहा, हाँ जी बाबा, हाँ जी का पाठ दादी ने आज ही से लेकर अब तक ये पाठ दादी ने पक्का किया। जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे वैसा दादी को करना है, उसमें अपना कोई संकल्प, अपनी कोई बुद्धि वो दादी को नहीं लगानी है। और इसी रीति से देखें कि जहां भी बाबा ने दादी को भेजा, दादी हाँ जी का पाठ पक्का करके चली गई। मुझे याद है दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है और आप मेरे को जापान भेज रहे हो, मैं वहां क्या सेवा करूंगी। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची जाओ, बाबा अपे सेवा कराएगा। तो वो ऐसा कंट्री था जहां अंग्रेजी भी नहीं चलती थी, हर एक को ट्रांसलेशन की दरकार होती थी क्योंकि जैपनीज भाषा थी। तो दादी को भी ट्रांसलेटर मिल गया था, इसलिए सेवा बहुत अच्छी तरह से गई दादी थोड़े दिन के लिए, लेकिन पूरा साल डेढ़ साल रह के दादी सेवा करके फिर दादी वापस आई। तो दादी अपनी सेवा में आगे बढ़ती गई और बाबा दादी को बढ़ाता गया। और मैं अपनी लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई में रही। फिर जब मैं यज्ञ में आई तो बाबा ने कहा कि बच्ची पढ़ाई तो तुमने पढ़ ली, अब तुम्हें बाबा की सेवा करनी है, बोलो सेवा के लिए जाएंगी। मैं कहा जी बाबा, आप जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। तो बाबा ने दादी को कहा कि दादी आप मम्मा को दिल्ली में बुलाओ, तब मैं कहूंगा वहां मेरी कुमार का वहां। तो दादी ने कहा हाँ बाबा, हम जरूर बुलाएंगे। तो जब दादी गई तो इसी लक्ष्य से गई कि मुझे मामा को दिल्ली में बुलाना ही है। उस समय दादी रहती थी करोल बाग में और दीदी रहती थी कमला नगर में। ये एक कोना था, वो पुरानी दिल्ली था, ये नई दिल्ली था। फिर बाबा ने मेरे को कहा तुम दिल्ली जाओ, मामा आने वाली है ना, तो जाओ कुमारका के साथ तैयारी करना। मैं नई नई थी, क्या तैयारी करती, पर बाबा ने भेजा था तो मैं चली आई। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था, परंतु ये था कि मेरा जन्म दिव्य दृष्टि से हुआ। पहले दिन ही बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सारा कार्य कराया। तो कहा भोग तो लगा सकती हो, मैं कहा हाँ भोग लगा सकती हूँ, बोला जाके भोग लगाना। मैं कहा ठीक है। फिर मैं दिल्ली आ गई, वहां पर मैं भोग लगाती थी। संदेश इतना मुझे सुनाना नहीं आता था, तो दादी उसको सुना देती थी, फिर दादी बताती थी। खैर दादी ने मकान ढूंढा, स्थान ढूंढा। उस समय राजौरी गार्डन बन रहा था, तो वहां पर एक बहुत अच्छी कोठी मिली और कहा यहां पर ही हमने मामा को बुलाना है। तो बस मामा को आने की तैयारी हुई, तो उससे पहले उस मकान की सारी तैयारी होनी थी। तो दादी मेरे को लेकर आई, कहा करोल बाग में इतने लोग रहते थे, कहा इतना एक दो, एक खाना बनाने वाली थी, एक मैं थी, एक दादी थी। लेकिन दादी को मुझे सब कुछ सिखाना था, तो इसलिए दादी मुझे लेकर आई। तो वहां पर तो कोई और भाई बहन भी नहीं थे, कोई नौकर भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। तो दादी सुबह उठ के झाड़ू लगाती थी, तो मेरे को आता थी इतनी बड़ी दादी हो झाड़ू लगा रही है। मैंने कहा नहीं दादी मैं लगाएंगी। तो हमको झाड़ू लगानी आती नहीं थी, हम तो ऐसे 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 फटाफट। दादी कहती है झाड़ू लगा रही हो, ठीक से लगाओ। तो जब चाहे दो बार हो चाहे तीन बार हो, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाती थी ना, तब तक कहती लगाती जाओ लगाते जाओ लगाते थे। फिर जिससे धीरे धीरे उसमें परफेक्ट हो गई। फिर पोछा लगाना था, इस तरह से स्थूल काम के अंदर दादी ने मुझे परफेक्ट किया। फिर क्लास कराने के बाद दादी खाना बनाती थी, तो मुझे आता था दादी खाना बना रही है और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। तो एक दिन कहा आज मैं सरप्राइज दूंगी दादी को, खाना बनाऊंगी। तो उसमें खिचड़ी बनानी थी, तो मैंने दाल चावल भिगो दिए, पानी चढ़ा दिया, दाल चावल डाल दिए। अब मैं सोचने लगी कि नमक जो है ना, वो पहले डालते हैं या पीछे डालते हैं। अगर पहले डालेंगे तो पानी में निकल जाएगा, और पीछे डालेंगे तो नमक गलेगा, ये नहीं गलेगा मुंह में आएगा। मैं बड़ी देर तक सोचती रही। फिर मैंने कहा अच्छा पूछ लेती हूँ। फिर मैं दादी के पास गई और मैं दादी को कान में पूछने लगी कि खिचड़ी में नमक पहले पड़ता है या पीछे पड़ता है। देखो भाई दादी इतनी निश्चल थी, हंसने लगी। मैंने कहा इतने हंसने की क्या बात है। तो दादी सबके सामने कहती है देखो ये छोटी छोटी लड़कियां ऐसी ज्ञान में आ गई हैं जिनको कुछ आते ही नहीं है। तो सारे भाई लोग हंसने लगे, मेरे को आए ही दादी ने सबके सामने मेरी गिलानी कर दी। दादी कहती है पहले नमक डालती है पीछे वो करती है। तो मतलब ये छोटी से बड़ी बातें तक दादी ने हमको सिखलाई। उस समय वहाँ बहुत बड़े बड़े सरदार बड़े अच्छे आते थे, तो दादी मुझे वहां से फोन करती थी कि आज मैं नहीं आऊंगी तो मुरली पढ़ के सुनाना। तो मैं कहती थी मैं इनको इतने बड़े बड़े सरदार ये सब, इनको मैं मुरली पढ़ के क्या सुनाऊंगी। लेकिन दादी को मुझे मुरली पढ़ना भी सिखाना था ना, इसलिए रोज मुझे मुरली पढ़नी पड़ती थी। पढ़ते पढ़ते मुझे मुरली का अभ्यास हो गया। फिर कई क्वेश्चन वो हमसे पूछते थे ना, तो उसका जवाब मुझे नहीं आता था। तो मैंने कहा कि सारी बातें एक दिन में नहीं पूछते हैं, कुछ बातें कल भी पूछना, इसका जवाब मैं कल दूंगी। फिर जब दादी आती थी तो मैं दादी से पूछती थी फलाना भाई मेरे से ऐसे पूछता है, इसका क्या जवाब है। मैंने तो उसको कह दिया कल पूछना, तो एक एक क्वेश्चन का दादी आंसर देती जाती थी और फिर मैं बड़ी अथॉरिटी से उसको सुना देती थी। इस तरह से मेरा मुरली सुनाना शुरू हुआ, स्थूल काम करना शुरू हुआ, तो देखा हमारी फुलवाड़ी जो थी बहुत अच्छी हो गई। फिर मामा भी आई, मामा ने देखा, मामा ने खूब सेवा बढ़ाई। फिर बाबा को बुलाया कि दिवाली जो है ना ये बाबा दिल्ली में मनाएंगे, और बाबा आया और दिल्ली में दिवाली मामा बाबा ने मनाई। क्या शानदार दिवाली थी, ऐसी दिवाली दिल्ली में कभी हुई नहीं। और दादी ने बहुत सेवा की। और दूसरी बात ये देखी कि दिल्ली में उस समय विघ्न बहुत पड़ते थे, बांधेलियां बहुत थी, लेकिन दादी कभी विघ्नों से घबराई नहीं। एक बार की बात है, एक भाई एक बहन का पति आया रात के समय, और आते साथी कहता मेरी फलानी युगल कहां, युगल कहां, युगल कहां। उसने कहा यहां है ही नहीं, देख लो आप सारा, मैं यहां बैठी हूं। वो सुने ही नहीं, एक पत्थर मारा एक ट्यूब तोड़ी, दूसरा पत्थर मारा दूसरी ट्यूब तोड़ी। दादी शांत खड़ी, दादी कहती इसने ट्यूब ने क्या किया है जो तुम पत्थर मार के बंद कर रहा है, तुझे अपनी जुगल को देखना है, तू देखा सारा घर, यहां बैठी हो तो ले जा, अगर ना हो तो चला जा। लेकिन दादी ने अपना बैलेंस, अपना होश हवास नहीं खोया, शांति पूर्वक उसको कहा बताया, उसने इधर उधर देखा और चुपचाप फिर वो चला गया। ऐसी तरह की कितनी बातें दिल्ली में आती थी, लेकिन अब ये देखती थी दादी ये नैनों के अंदर रहम था, प्यार था, स्थिति जो थी वो अचल अडोल थी, सदा मुस्कराती। तो किसी को ये फील नहीं होता था कि ये कोई झूठ बोल रही है या कोई बहाना बना रही है, ऐसा उनको कभी फील नहीं होता था। और उस रीति से दादी जो थी अपने सम्मान में स्थित होकर सबको सम्मान देती हुई दादी आगे 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 चीढ़ी चढ़ती गई, और बाबा दादी को आगे बढ़ाता गया, और मैं भी दादी से सीखने लगी। दादी ने मुझे भाषण करना सिखलाया, कैसे कैसे करना होता है। तो मतलब दादी ने मेरे को जैसे हर प्रकार से शिक्षा देकर अपना सेवा साथी बनाया, और सेवा साथी बनाकर दादी ने कदम बाई कदम उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दादी सबकी प्यारी बन गई। और यहां तक कि सन्यासी जो कभी भी ब्रह्मा कुमारियों को मानते ही नहीं थे, हमेशा आलोचना करते थे, लेकिन एक बार काठमांडू हिंदू राज्य कहा जाता था, वहां पर सर्व सन्यासियों का हिंदू धर्म वालों का सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन में दादी को भी बुलाया गया, और दादी सारे महामंडलेश्वर से मिली, तो वो सन्यासी भी कहते थे कि दादी भी महामंडलेश्वरी है, ब्रह्मा कुमारी बाद में है लेकिन महामंडलेश्वरी पहले है। तो जहां महामंडलेश्वर बैठते थे उसी सीट पर दादी को सेट किया गया, और देखा कि सारे गहरे वस्त्रधारी और उसके बीच में एक श्वेत वस्त्रधारी दादी मुस्कराती हुई चमक रही थी। ये भी बाबा ने कमाल करके दिखलाया। और उसी सभा के बीच में एक सन्यासी ने, जो बहुत बड़े मठ का सन्यासी था, उसने कहा कि दादी हमारी बहन है, अगर हमारी बहन को कुछ होता है तो हम 1.5 लाख सन्यासी जो मेरे फॉलोअर है ना, वो सब दादी के पीछे दादी की रक्षा के लिए है। तो दादी ने मुस्कराते हुए कहा कि वो दिन आएगा नहीं जो मेरी कोई रक्षा करे या मेरे आगे कोई ऐसा विघ्न आवे। मेरे साथ तो विघ्न विनाशक है, मेरा रक्षक है ऊपर बैठा हुआ, वो सब कुछ करेगा। तो दादी सदा निश्चिंत, सदा निश्चल, तो वो सब सन्यासी भी देखते थे तो वो ये कहते थे ये दादी बड़ी दूरदर्शी है, निर्मांचित है। वो तो उनकी सभा के बीच में ही दादी की महिमा करते थे और दादी उनके सामने ऐसे बैठती थी जैसे दादी मैं आपकी छोटी बहन हूं, कभी बड़प्पन नहीं दिखलाया, मैं आपकी छोटी बहन हूं। बोला छोटी बहन दादी कैसे, आपसे तो हम बहुत बातें सीखते हैं। तो उस तरह से दादी बड़ी निर्मांचित होकर रही और जब बड़ी बड़ी सभाओं में जाती थी या कहीं जाती थी किससे मिलती थी तो दादी एक अमिट छाप अपनी छोड़कर आती थी। वो दादी को कभी भूल नहीं सकते थे। एक बार की बात है कि मधुबन में 3,500 समर्पित बहनों की भट्टी थी। उस भट्टी में उस समय राजस्थान का गवर्नर चन्ना रेड्डी था। वो चन्ना रेड्डी यहां पर आए और उन्होंने देखा कि इतनी सारी बहनें और दादी इनका इनकी सभा का संचालन कर रही है, सब दादी 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 कह रहे थे तो उसका बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि दादी छोटी मोटी हस्ती नहीं है। और वो मानने वाला था साईं बाबा को जिसके बाल बड़े बड़े हैं। तो जब उनके पास गया तो उसने कहा कि आपके पास में यंत्र मंत्र तंत्र की शक्ति है और दादी प्रकाश मणि के पास प्योरिटी की शक्ति है। और उसने प्योरिटी के बल पर अपनी एक बड़ी शक्ति सेना तैयार की हुई है। तो उसको इतना जिगार रिस्पेक्ट दादी के साथ में कि दादी इतनी कुमारियों को उनके जीवन को बना रही है तो उसको बहुत दादी पे गर्व हुआ। और कोई काम करता था दादी से पूछता था। वैसे दुनिया में उसका बहुत निर्भय था। तो उसने कोई प्रेरणा आई कि ये छोटे छोटे काम करते हैं इनको डॉक्टरेट की डिग्री दे देते हैं। और दादी जो मानवता की सेवा कितना बड़ा कार्य कर रही है उसको मैं डिग्री दिलाऊंगा। तो उदयपुर यूनिवर्सिटी से दादी को मानव सेवा के अर्थ डॉक्टरेट की डिग्री दिलाई गई। और दादी इतनी निश्चिंत, ये सब बाबा की कमाल है, करण करामनहार बाबा है। बाबा दादी ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया। मैंने दो शब्द कभी भी अपने जीवन में दादी के मुख से नहीं सुने, एक मैं शब्द और दूसरा मेरा शब्द। दादी ने कभी नहीं कहा। कोई बात कहनी भी होती थी ना तो दादी यही कहती थी कि दादी का विचार ये है, ये कभी नहीं कहा मेरा विचार ये है, नहीं। इतना बड़ा यज्ञ दादी संभालती थी, दादी ने कभी नहीं कहा मैं संभालती हूं, मैं निमित्त हूं और करण करामनहार बाबा है। सदा निश्चिंत, चाहे कितना से कितना बड़ा विघ्न हो, चाहे कितनी से कितनी बड़ी बात हो, लेकिन दादी सदा निश्चिंत रहती थी, सदा न्यारी रहती थी, सदा निमित्त भाव से चलती थी कि बाबा मेरे द्वारा जो कराना होगा कराएगी। कैसी भी आत्मा दादी के सामने आवे, कुछ भी बोल के जावे। एक बार मेरे सामने एक आत्मा आई भरी हुई थी और दादी के आगे जोर जोर से बोलने लगी। उसके अंदर जो था भरा हुआ वो निकाल रहा था। दादी मुस्कुराती हुई शांत भाव से वो देख रही थी। जब चुप हो गया, दादी ने कहा थक गए हो, पानी पियोगे? वो चुप हो गया। तो दादी ने कहा अच्छा जो तुमने कहना था कह लिया, तो चुप हो गया। दादी ने कहा तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। वो बेचारा चला तो गया, पर जाकर उसको इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मैंने इतनी सारी बातें माता जी को कही, लेकिन माता जी ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ कहा ही नहीं। मैं इतना बोला हूं, मैं कहा क्या कहती उस समय, अगर कुछ कहती तो आप मानते? दादी क्या कहती, लेकिन आज से आप ये कहो कि आज के बाद दादी मैं आपके सामने इतना गुस्सा नहीं करूंगा। जब अंदर से ये आ जाए ना आपको, फिर हम आपको दादी के पास में ले चलेंगे। थोड़ी देर बैठा रहा, सोचता रहा, फिर उठ के दादी के पास गया और दादी के पैर पकड़ लिए। कहा दादी मैंने बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, मैं बहुत थका हुआ था, बहुत भरा हुआ था इसलिए। दादी का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल गया ना, अब तो नहीं है तुम्हारे अंदर। बोला बोला अभी तुमको कुछ कहना हो ना तो धीरे से बोलो, ज्यादा देर से बोलेगा तेरा ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा, तुमको हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसलिए चिंता नहीं। दादी को दिया, दादी ने सब समझ लिया, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद वो भाई ने कभी भी दादी के आगे जोर से बोला ही नहीं, और इतना समर्पित भाव से दादी के साथ चला कि जो दादी आप कहो, जैसे आप कहो, सारा उसका गुस्सा दादी ने निकाल दिया। और जितनी दादी लॉफुल उतनी दादी लवफुल, कोई बात आती थी दादी के सामने दादी एकदम लॉफुल हो जाती थी, और उस बात को दादी अच्छी तरह से सोचती थी, समझती थी, करती थी कि भाई ये तो तुमको करना पड़ेगा, और ऐसी तरह से कहती थी जो वो अपनी गलती मान लेता था, दादी सचमुच मैंने किया है, मैं इसके लायक हूं कि आप मुझे कोई सजा दो, रियलाइज करता था। तो दादी कहती है चाचा तुमने रियलाइज कर लिया ना, ये सबसे बड़ी सजा है, अब इसके बाद तुम कभी कोई भूल नहीं करना, लवफुल और उसके बाद लवफुल। इतनी लवफुल हो जाती थी जो जैसे उसके ऊपर कोई घाव के ऊपर मरहम लगा देता है ना, इसी रीति से दादी उसको एकदम हल्का कर देती थी। और दादी के अंदर एक ही लक्ष्य था कि मुझे बाप समान न्यारा प्यारा बनना है। जैसे बाबा के आगे हम जाते थे ना, तो सचमुच ऐसा लगता था कि जैसे कोई हम शीश महल में आ गए, कोई लाइट के घर में आ गए हैं, और ऐसा लगता था हमारे दिल की जो धड़कन है ना वो भी हम सुन रहे हैं, कैसे धड़कना, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, जैसे लगता सारा ब्रह्मांड घूम रहा है बाबा के। तो दादी कहती थी मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे बाबा के आगे लोग चले जाते थे एकदम अचरित बन जाते थे, और मैं चाहती हूँ कि मेरे आगे भी कोई आवे ना तो ऐसे ही अचरित ही बन जाए, ऐसे ही न्यारा बन जाए। तो दादी इसके लिए पुचारित करती थी, एकदम न्यारा, एकदम सबसे एकांतवासी, दूरदर्शी, सबकी प्रिय। तो उसने बाबा की एक 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 धारणाओं को, एक एक गुणों को दादी ने अपने जीवन में समाया, संजोया, उसको धारण करके चली। और फिर इतनी नष्टो मोहा जो दादी दूसरों को भी कहती थी कि देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ो, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो, उपराम बनो। तो दादी सचमुच दादी के कोई भी देह और देह के संबंध किसी के साथ नहीं थे, किसी एक आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं था, सबके साथ दादी की समान दृष्टि थी, समान प्यार था। कोई ये नहीं कह सकता मुझे दादी ज्यादा प्यार करती थी, वो कहे मुझे दादी प्यार करती, सबको दादी करती थी। सब यही कहते थे, जैसे हम कहते थे मेरा बाबा, कोई ये नहीं कहता तेरा बाबा, वैसे दादी के लिए भी सब कहते थे मेरी दादी, मेरी दादी। तो दादी सबकी दादी थी। नष्टो मोहा, एक बाबा दूसरे किसी के प्रति भी उसका न लगाव था, न झुकाव था, न कुछ, न्यारी, नष्टो मोहा। यहां तक कि हमने देखा अंतिम दिनों में दादी का अपने देह के साथ में भी कोई लगाव नहीं था। डॉक्टर कुछ करता था ऐसे दादी हाथ कर देती थी, करो, और देखती रहती थी ये क्या कर रहा है। तो ऐसा लगता था कि दादी न्यारी है और ये किसी दूसरे के शरीर को ये किया जा रहा है। जरा भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। इन दो तीन सालों के अंतिम उसमें दादी बिल्कुल न्यारी बन गए, बाप समान बन गए। सदा जैसे बाबा कहते ना ऊपर रहो और सेवा के अर्थ नीचे आओ, उसके बाद फिर ऊपर चले जाओ। तो हमने देखा कि दादी ज्यादातर आंखें बंद करके रखती थी, जब कोई आता था आंखें खोली, उनको नजर से निहाल किया, उन आंखों के अंदर शक्ति भी थी, शांति भी थी, स्नेह भी था, जो इतना भरपूर हो जाता था उस दृष्टि से वो चला जाता था। लास्ट सीन तो दादी की ऐसी थी जो जीवन में मैं नहीं समझती किसी ने देखी होगी, और मैंने भी अपने जीवन में पहली बार देखी। जिस समय दादी का अंतिम क्षण था, दादी मुस्कुराती हुई पड़ी हुई थी। एक एक कर्म इंद्रियों से दादी धीरे 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 जैसे छुट्टी लेती जाए, मुक्ति लेती जाए, आगे जा रही थी। एक बार बाबा ने दादी को भेजा भी, पलक हिली, हाथ हिले, लेकिन दादी ने कहा ये शरीर मेरे लायक नहीं है, चलिए। हम सब सामने खड़े हुए हैं और दादी धीरे धीरे विदाई ले रही है बाबा की गोद में। कोई कुछ नहीं कर सकता है। 10:05 पर आज के ही दिन दादी अव्यक्त हो गई और छोड़ गई अपने पीछे अपने किए हुए श्रेष्ठ कर्म, बिताए हुए क्षण, इतने बड़े इतने छोटे से पौधे को इतना बड़ा वट वृक्ष बनाकर, सब आत्माओं को एकता के सूत्र में बांधकर, प्यार के सूत्र में बांधकर, सबका कल्याण करते हुए दादी ने इस भौतिक लोक से विदाई ली। लेकिन दादी का जो मैनेजमेंट था, जो दादी ने यज्ञ में स्थापन किया, वो आज तक चल रहा है। जो दादी बनाकर गई, जो दादी सिखाकर गई, वो सब वैसे ही चल रहा है जैसे चलता था। कोई भी आते थे तो ये देखते थे इनको ये मैनेजमेंट कौन सिखा रहा है, किसने सिखाया है। तो दादी हमेशा कहती थी ऊपर वाला सिखा रहा है, बाबा सिखा रहा है। कभी दादी के मुख से नहीं लगा मैं कर रही हूं, नहीं, मैं शब्द उसको आते ही नहीं था, मेरा शब्द उसको आते ही नहीं था, इस मैं और मेरे की अज्ञानता थी। बाबा और दादी, दादी का विचार ऐसा है, बाबा ये कर रहा है, तो अंत समय भी बाबा दादी, दादी बाबा, जो समानता के उसने दादी बाबा के पास में अव्यक्त वतन में पहुंच गए। तो एक एक चीज जिसको दादी कहते सर्व गुण संपन्न थी, हर कार्य का दादी को अनुभव था। हर चीज में दादी माहिर थी, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे वो भोजन बनाना हो, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस में जाना हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, लेकिन सब में संपन्न। कोई भी बात होती थी ना, दादी न्यारी बन के बोला और प्यारा बन के संभाल लिया। तो दादी में सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये चार शक्तियां दादी के जीवन के अंदर प्रैक्टिकल जो कुछ होता था उस स्वरूप देखने में आता था। तो कहते सर्वशक्ति स्वरूपा दादी, आज भी बेहद की सेवा पर अव्यक्त रूप से तत्पर हैं और रहेंगी, क्योंकि जब तक स्थापना का कार्य है, चलता है, चलेगा, दादी का सहयोग उसमें अंत तक जैसे आज तक मिला है, मिलता रहेगा, और जब तक ये स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता है दादी वतन में बाबा के साथ में, जब तक हम लोग आए में तब तक बाबा भी इंतजार कर रहा है, दादी भी इंतजार कर रही है कि सब संपन्न होकर आवे तो हम घर चले। ऐसे तो अनुभव बहुत है, लेकिन ये होता है समय की सीमा को भी देखते हैं, आज दादी का भोग भी है। ओम शांति।